आज की बात। श्रोताओं, कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अहमद अब्बास। कार्यक्रम में आज हमारी चर्चा होगी भारत में बसने वाले दलित समुदाय के बारे में, इसलिए कि इस देश के नए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का संबंध इसी समुदाय से है और उन्होंने बहुत लंबा सफ़र तय करके खुद को गांव के एक पिछड़े परिवार से राष्ट्रपति पद की ऊँचाइयों तक पहुँचाया। भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में संसद भवन के सेंट्रल हॉल में पद और गोपनीयता की शपथ लेने के बाद रामनाथ कोविंद ने अपने संक्षिप्त भाषण में कई बिंदुओं को रेखांकित किया।
मुझे भारत के राष्ट्रपति पद का दायित्व सौंपने के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं पूरी विनम्रता के साथ इस पद को ग्रहण कर रहा हूँ। यहाँ सेंट्रल हॉल में आकर मेरी कई पुरानी स्मृतियां ताज़ा हो गई हैं। मैं संसद का सदस्य रहा हूं और इसी सेंट्रल हॉल में मैंने आप में से कई लोगों के साथ विचार विनिमय किया है। कई बार हम सहमत होते थे, कई बार असहमत, लेकिन इसके बावजूद हम सभी ने एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना सीखा। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। मैं एक छोटे से गांव में मिट्टी के घर में पला बढ़ा हूँ। मेरी यात्रा बहुत लंबी रही है, लेकिन ये यात्रा अकेले सिर्फ मेरी नहीं रही है, हमारे देश और हमारे समाज की भी यही गाथा रही है। अब स्वतंत्रता मिले 70 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। हम 21वीं सदी के दूसरे दशक में हैं, वो सदी जिसके बारे में हम सभी को भरोसा है कि ये भारत की सदी होगी। भारत की उपलब्धियां ही इस सदी की दिशा और स्वरूप तय करेंगी। हमें एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जो आर्थिक नेतृत्व देने के साथ ही नैतिक आदर्श भी प्रस्तुत करे। साथियों, देश की सफलता का मंत्र उसकी विविधता है। विविधता ही हमारा वो आधार है जो हमें अद्वितीय बनाता है। इस देश में हमें राज्यों और क्षेत्रों, पंथों, भाषाओं, संस्कृतियों, जीवन शैलियों जैसी कई बातों का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। हम बहुत अलग हैं, लेकिन फिर भी एक हैं और एकजुट हैं।
ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि यदि किसी इंसान में क्षमता है तो वो धरातल से आसमान जैसी ऊंचाइयों का सफर तय कर सकता है। श्री रामनाथ कोविंद के चयन से पहले कुछ गलियारों ने इस्लाम और ईसाइत के बारे में अतीत के उनके कुछ कथित बयानों को लेकर आपत्ति भी जताई थी। AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी:
AP should say first whether the report wherein Mr. Kovind had said this or not. Didn't he say that Muslims and Christians are alien to this nation? What right has anyone got to call Muslims and Christians who are first citizens of this country as alien to this nation? Because when a person says this, he is repeating the ideology of Savarkar, Gulwalkar and RSS. So this is nothing new, but has he said this or not?
इस बार राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जहां NDA ने रामनाथ कोविंद के रूप में अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा, वहीं विपक्षी दलों ने कांग्रेस के नेता और पूर्व संसद सभापति मीरा कुमार को उम्मीदवार बनाया। दोनों ही उम्मीदवारों का संबंध दलित समुदाय से है। चुनाव में रामनाथ कोविंद को विजय प्राप्त हुई। श्री कोविंद के राष्ट्रपति बनने से देश के दलित वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सवाल बहुत से लोगों ने उठाया। कुछ टीकाकार ये मानते हैं कि कोविंद के राष्ट्रपति बनने से दलित समुदाय का स्वाभिमान बढ़ेगा। आत्मस्वाभिमान बढ़ाने के लिए ये अच्छा कदम है। दलितों में भी स्वाभिमान की भावना यकीनन आएगी, लेकिन साथ ही टीकाकारों का ये भी कहना है कि ये केवल प्रतीकात्मक परिवर्तन है, इसलिए कि कुछ पदों के लिए दलित उम्मीदवार मैदान में उतार कर इस कमज़ोर वर्ग को खुश तो कर दिया जाता है, लेकिन इस वर्ग के जो मूल मुद्दे हैं उनके समाधान के लिए कोई उल्लेखनीय काम नहीं हो पा रहा है। भारतीय राजनीति में प्रमुख दलित चेहरा समझी जाने वाली बहुजन समाज पार्टी के नेता मायावती ने दलितों का मुद्दा राज्यसभा में उठाना चाहा तो उन्हें एक तो बहुत कम समय दिया गया और दूसरे उनके भाषण के दौरान सत्ता पक्ष के सांसदों ने जमकर हंगामा किया।
267
आप लोग मुझे अपनी बात रखने दो।
आप सुनिए सुनिए, अरे सुनिए सुनिए, 267 मात्र है। चलो
मान्यवर, जब से केंद्र में बीजेपी व इनकी एनडीए की सरकार बनी है तो तब से पूरे देश में और खासकर बीजेपी शासित राज्यों में तो इन्होंने अपनी जातिवादी संप्रदायिक व पूंजीवादी मानसिकता के तहत चलकर अपने राजनीतिक स्वार्थ में वे अपने नफे नुकसान को भी सामने रखकर यहाँ विशेषकर गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, मजदूरों, किसानों एवं मध्यम वर्ग बड़े पैमाने पर शोषण में
उत्पीड़न
जो अभी भी लगातार
जारी
है, तो वह किसी से छिपा हुआ नहीं है।
इस स्थिति से नाराज होकर बसपा प्रमुख ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और देश भर में भाजपा के विरुद्ध अभियान चलाने की घोषणा की।
अब हमारी पार्टी इनको पूरे देश में व खासकर उत्तर प्रदेश में इनकी इस मानसिकता का व रवैये का जरूर पर्दाफाश करेगी। वह इनको आसानी से अब चैन से बैठने नहीं देगी और अब हमारी पार्टी इन सभी मामलों में पूरे देश में इनके गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली का पूरे व्यापक तरीके से पर्दाफाश करेगी। वह इन लोगों को बड़े पैमाने पर जो दुखी पीड़ित लोग हैं पूरे देश में इन लोगों को बड़े पैमाने पर संगठित भी करेगी।
वैसे कुछ नेता और विश्लेषक ये मानते हैं कि मायावती के इस्तीफे के राजनीतिक कारण हैं।
उनका जनाधार बड़ी तेजी से खिसका है। अब उस दलित बोर्ड को जो उनका अपना आधार है उसको पाना चाहती हैं और इसके लिए उन्होंने मुद्दा सहारनपुर से बड़ा मुद्दा कोई नहीं हो सकता था। उसमें एक और चुनौती उनके सामने है कि जो लोग जो नेता उभरा है वहां पर चंद्रशेखर जिसने इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व किया वो इनका जनाधार खींचे ले रहा है। उस जनाधार अब ये चुनौती ये है कि कैसे उससे अपना जनाधार बचाएं।
श्री रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति पद के लिए चयन के प्रभावों के बारे में टीकाकार बंटे हुए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बेग के हवाले से एक वेबसाइट ने लिखा कि ये एक समुदाय को साथ जोड़ने के लिए उठाया गया राजनीतिक कदम था। इससे उस समुदाय को कोई फायदा नहीं होगा। अगर इरादा किसी सेक्शन का फायदा करना है तो फिर आप उसके लिए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक नीतियां लाएंगे। भारत के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार का भी मानना है कि दलित, महिला आदि जैसे मुद्दे प्रतीकों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं और राजनीतिक दल इन मुद्दों को मास्टर स्ट्रोक के रूप में प्रयोग करते हैं। इसका मतलब यह है कि चुनाव के समय उठाए जाने वाले ये कदम किसी वर्ग का भला करने के लिए नहीं बल्कि उनका समर्थन और वोट पाने के लिए होते हैं। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रतीक के रूप में ही सही यदि ये कदम उठाए जाते हैं तो इसका अच्छा संदेश जाता है और बहुत से लोगों को प्रोत्साहन मिलता है। लेकिन इस बीच ये भी सच्चाई किसी से छिपी नहीं है कि दलितों को आज भी निशाना बनाया जा रहा है। गुजरात के ऊना क्षेत्र की घटना पर तो बड़ा बवाल हुआ था, जबकि ये एकमात्र घटना नहीं थी। ऐसी घटनाएँ लगातार हो रही हैं। सहारनपुर की हिंसा भी चर्चा में रही। इस घटना में जिस तरह दलितों को निशाना बनाया गया और कई दिनों तक ये तांडव चलता रहा वो काफ़ी दुखद था। सांप्रदायिक प्रवृत्ति की हिंसा भी बार बार हो रही है, यहाँ तक कि हत्याएं हो जाती हैं। सबसे दुखद और चिंताजनक पहलू यह है कि आपराधिक घटनाओं में लिप्त तत्वों के विरुद्ध ठोस कार्यवाही नहीं हो पाती। भारतीय जनता पार्टी और उसके मातृ संगठन आरएसएस पर यह आरोप लगाया जाता है कि इस पार्टी में वैसे तो कहने के लिए कुछ दलित और अल्पसंख्यक नेता भी हैं, लेकिन ये पार्टी और ये संगठन जिस प्रकार के राष्ट्र का सपना देखते हैं उसमें अल्पसंख्यकों और दलितों के लिए कोई स्थान नहीं है। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार इस बारे में बहुत कुछ बोलते हैं।
मैं सबसे बड़ा मोदी समर्थक हूँ। कब? जब वो कह दें कि हम 15 लाख रुपये आपको दे देंगे, जब वो कह देंगे कि हम भ्रष्टाचार कम कर देंगे, जब वो कहें कि हम महंगाई कम कर देंगे, मैं उनका सबसे बड़ा समर्थक बन जाऊं। लेकिन वो ऐसा कैसे कहेंगे? ऐसा वो कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि उनका संबंध 1925 में स्थापित होने वाली भारतीय जनसंघ से नहीं, आरएसएस से है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या कहता है, उसको राष्ट्रवाद से कोई मतलब नहीं है, उसको हिंदू राष्ट्र बनाना है। इसीलिए उसको मत बोलिए कि ये राष्ट्रवादी लोग हैं, ये हिंदू राष्ट्रवादी लोग हैं। और हिंदू राष्ट्र कैसा होगा, जिसमें ब्राह्मण ब्राह्मण होगा, दलित दलित होगा, वो हायरार्की पे खड़ा होगा। इसका मतलब उसका संविधान भारतीय संविधान नहीं मनुवाद होगा, उसका संविधान मनुस्मृति होगा। हम इसलिए उसका विरोध करना चाहते हैं।
हालांकि दलितों के साथ होने वाले भेदभाव के विषय पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी का बयान ये जाहिर करता है कि उन्हें भी उच्च जाति और निचली जाति के बीच समाज के विभाजन का गहरा दुख है।
हम दूसरों को दोष देते हैं, उन्होंने हमारे समाज के कुछ लोगों को बरगलाने की चेष्टा की, मगर सावरकर की दृष्टि से हम देखें हिंदू समाज के अभिशाप को, हिंदू समाज की दुर्बलता को, हम अगर पराधीन हुए, हम आज अगर अपने घर में सम्मान के साथ जीवित नहीं है, तो इसके लिए पड़की इतने दोषी नहीं है, दोष हमारा अपना है, हमने समाज को बांट दिया। कभी वर्ण व्यवस्था का उपयोग रहा होगा तो रहा होगा, लेकिन उसके कारण जब दीवारें खड़ी होने लगी, व्यक्ति व्यक्ति को छोटा समझा जाने लगा, कोई बड़ा बन गया, कोई छोटा बन गया, समाज की एकता खंडित हो गई, विदेशियों ने उसका लाभ उठाया।
मगर विश्लेषकों के अनुसार सच्चाई यह है कि विभाजन आज भी है और आज भी भेदभाव का दंश भारतीय समाज झेल रहा है। कुछ बड़े पदों पर पिछले वर्ग के लोगों को बिठाना अच्छा कदम है, लेकिन सामाजिक सुधार करना है तो इससे काफी आगे जाकर और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है।